मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज 16 फरवरी 2017 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी अपने प्यारे नौजवान साथियों का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और दोस्तों आप सबके साथ ही मैं स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं वेदी कुमारी, आप फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से हैं, और आशुतोष शुक्ला, आप इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से हैं। तो वेदी और आशुतोष आप दोनों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों एक थोड़ी सी दुखद खबर है और मुझे कल एक मेल मिला है और ये मेल किया है संदीप कुमार ने जो हरिद्वार उत्तराखंड से हैं और हमारे थर्ड बैच के स्टूडेंट रहे हैं। इन्होंने लिखा है कि इनके पिता कुछ समय से कैंसर से पीड़ित थे और अब वे नहीं रहे। तो संदीप तुम्हारी इस खबर ने निश्चित रूप से हम सबको कहीं न कहीं थोड़ा सा आप यूं कह लीजिए कि थोड़ा सा विचलित किया है, दुख अवसाद से भरा है। तो मैं मित्रों आप सब की ओर से एकेडमी की पूरी टीम की ओर से अपनी पत्नी डॉक्टर प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से संदीप के पिता के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उन्हें अपनी शरण में स्थान दे और साथ ही संदीप को और परिवार के सभी सदस्यों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। संदीप ये प्रकृति का ऐसा विचित्र विधान है और इतना अटल विधान है कि दुनिया में कुछ भी किया जा सकता है सिवाय इसके कि जो व्यक्ति चला गया है इस धरती से उसे लाया नहीं जा सकता। राम भी नहीं रहे, कृष्ण भी नहीं रहे, ईसा मसीह नहीं रहे, गुरु नानक नहीं रहे, मोहम्मद साहब नहीं रहे, जो ईश्वर के दूत थे स्वयं ईश्वर थे, जब वे ही नहीं रहे तो हम जैसे इंसानों की तो क्या वक्त है। जब भी इस तरह की घटनाएं घटती हैं एक बार चोट लगती है और बहुत गहरी चोट लगती है और चारों तरफ निराशा और अंधकार दिखाई देने लगती है, लेकिन संदीप यकीन रखो कि सूरज मरता नहीं है, ये मेरा बहुत ही प्रिय वाक्य है, वह निकलेगा। थोड़ा सा वक्त लगेगा, अभी काली घटाओं में घिर गया है, प्रतीक्षा करो लेकिन पूरे हिम्मत के साथ प्रतीक्षा करो, क्योंकि जीवन का क्रम ही यही है, जीवन का सत्य ही यही है और सत्य को स्वीकार करने का साहस हम सब में होना ही चाहिए। ईश्वर तुम्हें शक्ति दे, सद्बुद्धि भी दे और विशेष रूप से साहस भी दे, यह मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। दोस्तों अब मैं थोड़ा सा संबोधित करना चाहूंगा अपने सिक्स्थ बैच के उन स्टूडेंट्स से जो अब लगभग भोपाल आने की तैयारी में लगे हुए होंगे और इसे सिक्स्थ बैच के स्टूडेंट अपने ट्रेनिंग का ही पार्ट समझें, सिविल सर्विस के प्रिपरेशन का ही पार्ट समझें। आप सब तैयारी करके मित्रों अपने अपने घरों से निकलेंगे। आशंकाओं के बारे में मैंने कल आप लोगों को बताया था और मैं चाहूंगा कि आप उस प्रयोग को करें। अब मैं जो बात आपसे कहना चाह रहा हूं मित्रों, ये इसका संबंध आपके व्यवहार से है, आपके आचरण से है, और ये जो व्यवहार है ये आचरण है जिसकी बात मैं अब करने जा रहा हूं, इसका संबंध फिर अगर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से देखें तो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट से है, जो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है इंटरव्यू, उससे है। और इस इंटरव्यू की जरूरत, इस पर्सनालिटी की जरूरत केवल सिविल सर्विस के लिए ही नहीं है, सच पूछे तो दूसरे केवल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए भी नहीं है बल्कि पूरी जिंदगी के लिए है, क्योंकि हम जिंदगी में हर पता नहीं कितने लोगों से मिलते हैं, अपने घर वालों से तो हर समय ही मिलते रहते हैं और जितनी बार भी मिलते हैं हर बार हमारे व्यक्तित्व का परीक्षण होता है, अपने व्यक्तित्व के माध्यम से ही हम मिलते हैं। तो मित्रों उसके लिए अब मैं कुछ बातें आपसे कहना चाहूंगा। जैसे ही आप अपने घर से निकलते हैं आप अपने व्यवहार को अब थोड़े से अपने कंट्रोल में लीजिए। घर में निकलने से पहले अपने बड़े बुजुर्ग माता पिता घर में जो और सदस्य हैं उनका आशीर्वाद लीजिए, अपने कुलदेव कुलदेवी ग्राम देवता जो भी हैं उनका स्मरण कीजिए और फिर बड़े खुश, बड़े उत्साह, बड़े प्रसन्न मन से वहां से निकलिए। मन में बिल्कुल निराशा का भाव नहीं होना चाहिए। आपके मुख पर इस तरह के प्रसन्नता का भाव हो कि वे माता पिता जो शायद आपको पहली बार अपने घर से बाहर भेज रहे हैं, बाद में ये सोचकर दुखी ना हो कि अरे बच्चा उदास था, उनको ऐसा लगे कि अरे वो खुश खुश गया है। और सच बात यह है कि आप कुछ लेने आ रहे हैं, कुछ पाने आ रहे हैं, आप खोने नहीं आ रहे हैं। खोने तो आता ही कौन है। तो जब आप पाने का भाव मन में रखेंगे तो आपके मुख पर प्रसन्नता आ जाएगी। मित्रों, इसके बाद आप घर से निकलेंगे और रेलवे स्टेशन तक पहुंचेंगे, बस स्टैंड तक पहुंचेंगे, जहां भी जाएंगे आप ऑटो लेंगे या घर वाले आपको छोड़ेंगे। बकायदे अगर आप ऑटो लेते हैं तो अपने व्यवहार को वाच करना शुरू कीजिए। याद रखिए कि वो ऑटो चलाने वाला भी एक व्यक्ति है। फर्क यही है कि आप प्रशासन चलाने वाले सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं और वो ऑटो चला रहा है, और अभी उसकी जरूरत आपको है। यानी कि अगर आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं और अगर आप बन गए तो इस ऑटो वाले का भी कंट्रीब्यूशन होगा। भले ही आपने उसको पैसे दिए, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन है कि वो घर, उसने आपको घर से स्टेशन तक पहुंचाया। हमारे संविधान में लिखा है डिग्निटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग, मनुष्य की गरिमा। मनुष्य की गरिमा को कभी भी मत भूलिएगा, और मनुष्य की गरिमा को आप उसके प्रोफेशन से जोड़कर मत देखिए, उसकी गरिमा को आप प्रकृति से जोड़ करके देखिए कि वह भी धरती पर उसी तरह से एक मनुष्य है जैसे कि आप हैं। जो कुछ बना है, बनाया है, वो समाज ने बनाया है, आपने अपने आप को बनाया, प्रकृति ने तो सबको मनुष्य के रूप में बनाया है। ये धारणा पूरी यात्रा भर आपके दिमाग में होनी चाहिए कि मुझे इस यात्रा के दौरान जितने भी लोग मिलेंगे, मैं मनुष्य की गरिमा के अनुकूल उनसे व्यवहार करूंगा, और न केवल मैं उनकी ही गरिमा का सम्मान करूंगा बल्कि सम्मान करके मैं अपनी भी गरिमा का परिचय उन्हें दूंगा। इसके बाद आप फ्रेंड्स अपने ट्रेन में बैठ जाएंगे, और ट्रेन में बैठने के बाद आप चुपचाप मत हो जाइए, साइलेंट मत हो जाइए, आप इंटरेक्ट कीजिए, वहां के लोगों से बातचीत कीजिए, मुस्कुरा करके बातचीत कीजिए, उनको अच्छा लगेगा, आपको जीवन का एक नया दृश्य मिलेगा। जो कुछ अभी आप जीवन के बारे में सोच रहे थे शायद उनमें और कुछ जुड़ाव हो जाए, या अगर कुछ निगेटिव तरीके से सोच रहे थे तो उसमें सकारात्मक बदलाव भी आ जाए। अगर आपको लगता है कि किसी को मदद की जरूरत है, वहां कोई महिला है, कोई बूढ़ा व्यक्ति है, कोई अशक्त व्यक्ति है, तो उनकी मदद कीजिए। चाहे वो पानी लाने में मदद हो, चाय पिलाने में मदद हो, सामान उतारने और चढ़ाने में मदद हो, मदद कीजिए। क्योंकि जब आप मदद करेंगे तो याद रखिए, जब हम किसी की मदद करते हैं तो भले ही वो शब्द से न कहे, लेकिन उसकी आत्मा आपको आशीर्वाद देती है, उसके मन से आपके लिए प्रशंसा के भाव निकलते हैं, और उन प्रशंसा के भाव को आपकी जो आत्मा है वो कैच कर लेती है, पकड़ लेती है, और आपकी आत्मा मुस्कुरा उठती है। आप इसे अनुभव करेंगे और आप देखेंगे कि फिर आपकी जर्नी चाहे कितनी भी लंबी क्यों न रही हो, कितना भी कठिन क्यों न हो, आपकी वह जर्नी आसान बन जाएगी और आपको पता नहीं लगेगा कि आप कब अपने गंतव्य तक पहुंच गए। हड़बड़ाइए मत, ट्रेन को रुक जाने दीजिए, ट्रेन पर्याप्त समय तक रुकती है, आपको छोड़ के नहीं आगे बढ़ेगी। लोग 15-20 मिनट पहले, देखा ना, आधे घंटे पहले झड़बड़ाने लगते हैं, कुलमुलाने लगते हैं और ये दरवाजे पर आकर के खड़े हो जाते हैं। आप प्रयोग करके देखिए, ऐसा मत कीजिए, इत्मीनान से रहिए, अपने अंदर के बैलेंस को बना करके रखिए, और जब ट्रेन रुके तो आराम से उतरिए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर वहां से आप ऑटो लीजिए, ऑटो वाला फिर आपसे टकराएगा, नो डाउट कि वो उल्टे सीधे पैसे मांगेंगे। आप अपना संतुलन मत खोइए, आप अपना रेट बता दीजिए कि भैया इतने में चलना है तो बताओ, अगर वो मना करता है तो दूसरे से बात कर लीजिए, लेकिन उलझिए मत, उस पर झल्लाइए मत, है ना, उसको उपदेश मत दीजिए। इत्मीनान से ऑटो पकड़िए और जो जहां भी आपके रुकने का इंतजाम किया गया है वहां इत्मीनान के साथ जाइए। फिर वहां जो काउंटर पर व्यक्ति मिलेगा उसके साथ भी आपको बहुत ही सद्भावना से बात करनी है, ताकि उसको लगे कि हाँ, आप एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं, आप एक गरिमापूर्ण व्यक्तित्व हैं और एक गरिमापूर्ण कार्य के लिए आ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, आप जहां भी जाकर के रुकेंगे उनके दिमाग में एकेडमी फॉर एक्सीलेंस की एक इमेज है, उस इमेज की रक्षा करना अब आपका धर्म है, आपका दायित्व है, वो मशाल अब आप सबके हाथ में है। वहां आपका व्यवहार बहुत ही सद्भावपूर्ण होना चाहिए। अगर कुछ देर लग रही है कमरा मिलने में या थोड़ी सी अस्त व्यस्तता भी है मान लीजिए, तो बेचैन मत हो जाइए, चीजें सेट राइट होंगी। और अगर कोई समस्या आती है तो सबसे पहले आप खुद उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यह अच्छा अवसर है जबकि आप समस्याओं को जन्म देकर के उसे सुलझाने का अभ्यास करेंगे। इस अवसर को खोइए मत, समस्याओं से घबराइए मत, समस्याओं से जूझना सीखिए, समस्याओं को सुलझाना सीखिए, तभी तो व्यक्तित्व में चार चांद लगेंगे। अदरवाइज तो फिर व्यक्तित्व सपाट आसमान की तरह हो जाएगा। सितारे तो तभी लगेंगे जब चारों तरफ अंधियारा फैलेगा, यानी कि समस्याएं आएंगी, तभी तारे चमकते हैं। परेशान मत होइए, मान करके चलिए कि आप भोपाल आ गए हैं, आप कुछ भी अब गड़बड़ नहीं होगा, सब चीजें सेफ होंगी। समस्याएं आती रहती हैं तो समस्याएं सुलझेंगी भी, राइट। और फिर आप अपनी जगह पर रुकिए, आराम से रहिए, वहां आपके और भी दोस्त आएंगे, उनसे मिलिए, बातचीत करिए, घुलिए, मतलब आप एकांत भाव को छोड़िए, लोगों से मिलिए, बातचीत कीजिए, अपने दोस्तों से, सहयात्रियों से, और समझने की कोशिश कीजिए। बोलिए कम और सुनिए ज्यादा, बोलिए कम और सुनिए ज्यादा, यह भी आपके लिए एक सीखना होगा। अगर कोई दूसरे राज्य का स्टूडेंट आ रहा है, या कह लीजिए दूसरे राज्य का कोई यात्री आपके साथ है, तो उस राज्य के बारे में पूछिए, उनके काम के बारे में पूछिए कि आप क्या हैं। अगर आप दूसरों को बोलने का मौका देते हैं तो याद रखिए वो बहुत उत्साहित होता है और आप मनी मन आपकी प्रशंसा करने लगता है, लेकिन अगर आप उसको बोलने का मौका न देकर के खुद बोलते रहेंगे तो वो अंदर से अरुचि पैदा हो जाएगी। आप उसे बोलने का मौका दीजिए, बीच बीच में आप ये भी शो करते रहिए कि आपको मजा आ रहा है, और शो ही नहीं करना बल्कि सचमुच में आपको मजा आना चाहिए। तो मित्रों, ये मेरी थोड़ी सी कुछ हिदायतें हैं, और यदि आप सबके लिए संभव हो सके तो मैं कहना चाहूंगा कि जो आपके जनरल नॉलेज के प्री के जो पेपर होते हैं अनसॉल्व्ड के, और मेंस के जो पेपर होते हैं अनसॉल्व्ड के, पिछले कुछ सालों के, अगर आप अपने साथ ला सकें तो बेहतर है। उससे हो सकता है कि बीच बीच में थोड़ी सी आपको मदद मिल जाए, अदरवाइज एकेडमी फिर अपने ढंग से तो काम करती ही है। तो मित्रों, ये मेरे कुछ संबोधन थे अपने सिक्स्थ बैच के स्टूडेंट के लिए। मेरे आज के जो दूसरे श्रोता हैं उनसे मैं थोड़ी सी इस बात के लिए माफी चाहूंगा कि मैंने उनका वक्त लेकर के अपने छठवें बैच के श्रोताओं को कुछ दिया है, लेकिन ये बहुत जरूरी था। और मित्रों, सच पूछे तो मैं उनके माध्यम से आपको भी संबोधित कर रहा हूं। मैं मेरे आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को आप एक तरीके से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मान सकते हैं, या इंटरव्यू की तैयारी से जोड़कर देख सकते हैं। ये केवल उन्हीं के लिए नहीं है क्योंकि वो यहां आ रहे हैं, ये सबके लिए है, क्योंकि हम सब तो आखिर कहीं ना कहीं तो जा ही रहे हैं, और जिंदगी में कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो आप भी सब वे मेरे प्रिय श्रोता जो इसे सुन रहे हैं, इसी रूप में लेकर शायद मुझे इस बात के लिए माफ कर सकते हैं कि नहीं, मैंने उनके वक्त को जाया नहीं किया है। दोस्तों, अब मैं आज के न्यूज एनालिसिस पर आऊंगा। न्यूज में सिर्फ दो बिंदु हैं। पहला है अंतरिक्ष में जो भारत ने उपग्रह छोड़ करके एक मिसाल दुनिया के सामने कायम की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है दोस्तों। और दूसरी जो छोटी सी खबर थी वो थी जो रूस ने क्रीमिया के बारे में, यूक्रेन के बारे में कहा है कि रूस उसे वापस नहीं करेगा। ये दो घटनाएं हैं। जहां तक रूस क्रीमिया यूक्रेन की बात है, इसे आप सिविल सर्विस के लिए थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, लेकिन चाहे तो इंपॉर्टेंट नहीं भी मान सकते हैं। ये बात अलग है कि वर्ल्ड इंटरनेशनल सीनेरियो की दृष्टि से एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना है, क्योंकि खासकर क्रीमिया में रूस के हस्तक्षेप को लेकर के अमेरिका और रूस के बीच भी काफी एक तरह तनाव सा बना हुआ है। देखिए ट्रंप जी के आने के बाद क्या होता है, लेकिन हम इसकी बात अभी नहीं करेंगे। लेकिन जो अंतरिक्ष में भारत ने जो उपग्रह छोड़े हैं, 104 उपग्रह मित्रों, आज अखबार में काफी कुछ इसके बारे में लिखा हुआ है, आप सब उन्हें ध्यान से देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। मैं दो बहुत अच्छे एडिटोरियल जो हिंदी में ही है, बिजनेस स्टैंडर्ड के और दैनिक भास्कर के, वो आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, उसको भी बहुत ध्यान से पढ़ें और उसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्लीज आप लोग नोट कर लें। दोस्तों, अगर आप 2016 का पेपर उठा करके देखेंगे, मेंस का थर्ड पेपर, तो उसमें बकायदे इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। और मुझे इस बात की खुशी है कि पिछले साल मैंने बहुत स्पेशली मैंने कहा था कि अंतरिक्ष में भारत की उपलब्धियां एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि उसी समय, उससे कुछ समय पहले ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने जो सार्क संगठन के जो देश हैं, जब उनकी यात्राओं पर थे तो उन्होंने आह्वान किया था कि हम आपके सैटेलाइट छोड़ेंगे, छोड़ने में मदद करेंगे। तो उसको उस समय नाम दिया गया था सैटेलाइट डिप्लोमेसी, और फिर भारत की उपलब्धियां लगातार आगे बढ़ती रहीं। तो मैंने ये बात कहा था और मुझे इस बात की खुशी है कि वो परीक्षा में पूछा भी गया। देखिए कि एग्जामिनेशन में क्या पूछा गया। जनरली जो साइंस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सामान्य श्रेणी के होते हैं, है ना, उसमें एनालिसिस ज्यादा नहीं होती है क्योंकि साइंस है, तो साइंस की एनालिसिस तो साइंटिस्ट ही कर सकता है और आप और हम साइंटिस्ट नहीं है, हम जनरल स्टडीज के स्टूडेंट हैं। तो उस रूप में सामान्य किस्म के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं नमूने के तौर पर आपको पिछले साल पूछा गया प्रश्न बता रहा हूं, इससे आपको एक अंदाज मिल जाएगा। पिछले साल पूछा गया था दोस्तों कि अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों की चर्चा कीजिए। इस प्रौद्योगिकी का प्रयोग भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में किस प्रकार सहायक हुआ है। डिस्कस इंडियाज अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हाउ द एप्लीकेशन ऑफ दिस टेक्नोलॉजी हैज हेल्प्ड इंडियन इन इट्स सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये प्रश्न पूछा गया है। तो आप देख रहे हैं कि बहुत ही सामान्य तरीके का प्रश्न है, इसमें कोई एनालिसिस नहीं पूछ दी गई है। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, वो है न्यूज की नहीं है, अब मैं न्यूज पेपर पर आ रहा हूं, वो है चाइना की एक पॉलिसी जिसे वन चाइना पॉलिसी कहते हैं। वन चाइना पॉलिसी ये अभी चर्चा में आई है, पॉलिसी अभी की नहीं है, बहुत समय से है, 1960 से लगभग चल रही है, लेकिन अभी चर्चा में तब आई जब राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने ताइवान के प्रधानमंत्री से बात की, ताइवान के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, थोड़ा मैं मिस कर जाता हूं, उनसे बात की। इसका चीन ने विरोध किया कि उनसे क्यों बात की, क्योंकि यह अमेरिका के राष्ट्रपति का यह कदम चाइना की वन चाइना पॉलिसी के अगेंस्ट है। मित्रों, वन चाइना पॉलिसी के बारे में कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे मेल भी लिखे थे कि मैं उनसे चर्चा करूं, लेकिन मैं चर्चा अभी नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि वक्त नहीं है, लेकिन यदि संभव हुआ तो कल इसके बारे में मैं थोड़ी सी बातें जरूर करूंगा। लेकिन देखिए, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो चाइना है हमारा पड़ोसी देश है, विश्व की एक शक्ति है, और भारत का चाइना की नीति पर सीधे सीधे प्रभाव पड़ता भी है। और इसका प्रमाण ये है कि अगर आप 2013 का जनरल स्टडीज का पेपर उठा करके देखे, सेकेंड पेपर जिसमें आपका इंटरनेशनल रिलेशन भी है, तो उसमें एक प्रश्न पूछा गया है और वो प्रश्न मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। प्रश्न है, मोतियों के हार द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स से आप क्या समझते हैं, यह भारत को किस प्रकार प्रभावित करता है, इसका सामना करने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों की संक्षिप्त रूपरेखा दीजिए। फ्रेंड्स, हालांकि इसमें चाइना का नाम नहीं है, लेकिन जो द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है ये चाइना का ही है, जिसके तहत वहां के कुछ आइलैंड कुछ एरियाज को अपने कब्जे में लेकर के घेरना चाहता है, जो भी है, उसके डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं। तो चूंकि अब वन चाइना पॉलिसी चर्चा में आ गई है, इसकी फिर से बात होने लगी है, तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हम लोग आगे चल करके कभी बातें करेंगे। लेकिन मैं आज आपको एक बहुत ही खूबसूरत न्यूज आइटम दैनिक भास्कर का प्रोवाइड कर रहा हूं, बहुत ही खूबसूरत न्यूज आइटम, उसमें आपको वन चाइना पॉलिसी के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिल जाएगी। तो मित्रों, अब जहां तक न्यूज पेपर की क्लिपिंग्स का सवाल है, मैं आज आपको बहुत सारी क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं और सारी के सारी इंपॉर्टेंट क्लिपिंग्स हैं। इसमें एक क्लिपिंग्स है जो इन इकोनॉमिक टाइम्स का है, ट्रांसफॉर्मिंग सिटीज ऑफ इंडिया, आप कह लीजिए भारत के जो शहर हैं उनका रूपांतरण। और आप जानते हैं कि शहरी विकास भारत का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पिछले साल भी स्मार्ट सिटी पर क्वेश्चन पूछा गया है। ये मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं और यदि संभव हुआ और बहुत अधिक संभव भी होगा कि मैं इसका हिंदी वर्जन भी अपने आप सब हिंदी वाले स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करूं। तो दोस्तों, अब मैं आता हूं आज के ईमेल पर। ईमेल लिखने वाले अपने सभी दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, और उन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं, सुरभि चौहान पाली राजस्थान से, इरफान सैफी सुल्तान दोस्त उत्तर प्रदेश से, विजय कुमार जय प्रताप लोहिया बाड़मेर राजस्थान से, और विश्वास प्रकाश इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से। तो आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज का यह डेली ऑडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।